الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم حضرت کی نگرانی میں ایک خاص مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور حضرت نے ذرہ نوازی فرمائی ہے کہ مجھے حکم دیا، کچھ حساس مسئلے ہیں، ان کی حساسیت سے ساتھیوں کو آگاہ کرنا ہے۔ چونکہ ہم سب کی محنت کا رخ ایک ہے، اور الحمدللہ ہم سب کو حضرت کی نگرانی کی سہولت موجود ہے، تو عوام میں تو یہ مسائل عام طور پہ بیان نہیں کر سکتے، بلکہ میں اپنی زندگی میں یہ پہلی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، چونکہ عوام میں مزاج نہیں ہوتا ماننے کا، تو اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن مسائل بہت اہم ہیں، ان پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ آپ سب حضرات کی خدمت میں ہے کہ بیان کا مقصد یہ ہے کہ ان حساس مسائل سے آگاہی ہے۔ آپ حضرات جب یہ مسائل سنیں گے تو سننے کے بعد اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ چکا ہو، یا کسی اور سے کوئی اس طرح مسئلہ سن لیں، تو سن کر فتویٰ آپ حضرات نے نہیں دینا ہے، بلکہ وہ اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے تو کسی ماہر مفتی سے اس کا مسئلہ باقاعدہ لکھ کر جو ہے ان سے آپ نے ڈسکس کرنی ہے، نہ کسی کو بتانا ہے نہ خود اپنے اوپر فتویٰ لگانا ہے۔ اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو کچھ غلطیاں انسان سے پہلے سے ہو چکی ہوتی ہیں، تو اگر وہ غلطی کوئی ایسی اپنے سامنے آ جاتی ہے تو بھی کسی سے بات کرنے کے بجائے آپ کسی ماہر مفتی سے یا حضرت سے مشورہ کر لیں، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر بہت ساری شرائط کے ساتھ اور کافی اس پر غور کرنے کے بعد اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ایسے فتویٰ نہیں ہوتا، ابھی جو باتیں ہوں گی تو وہ اس طرح ہوں گی کہ شریعت نے جو ہمیں اصول بتائے ہیں ان اصول پر ہم پابندی کریں گے، اور ان حساس مسئلوں سے اپنے آپ کو آگاہ رکھیں گے، اپنے گھر والوں کو آگاہ رکھیں گے، تاکہ کوئی ایسی غلطی ہم سے نہ ہو جائے انجانے میں، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، کہ جس سے کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہمارے جو بچے ہیں، بچوں میں سے جب کسی بچے کی 7 سال عمر ہو جاتی ہے، تو 7 سال کی بچے کی عمر ہو یا بچی کی عمر، ان کے بستر الگ کرنے چاہیے۔ بچی اگر 7 سال کی ہو جائے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ سو سکتی ہے ایک بستر پہ، لیکن باپ کے ساتھ وہ جسم کے ساتھ جسم ملا کر اور جو ہے اس کو سونے سے 7 سال کی بچی سے احتیاط کرنی چاہیے والد کو۔ اور جب بچی 9 سال کی ہو جائے تو اپنی بیٹی کے ساتھ پیار میں احتیاط کرنی چاہیے، اس کی گالوں پر پیار نہ کیا جائے، اور اسی طریقہ سے اس کے ہونٹوں پر پیار نہ کیا جائے، اس میں والد کو احتیاط، یہ احتیاط کی عمر ہے۔ اور اگر پیار کرنا تو ہوتا ہے، صاف ظاہر اولاد ہے، تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے، اور اگر پیار بھی کرنا ہے تو اس کے سر پہ پیار کر لیا جائے، سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے، اور جسم کو بچی کے جسم سے جدا رکھنے کی کوشش کی جائے، اس میں احتیاط ہے۔ اور اسی طریقہ سے جو ہمارے بچے ہیں، वो बच्चे जब 7 साल की उम्र को पहुँचे तो अपनी वालदा के साथ, अपनी बहन के साथ ना सोए, बल्कि उनके बिस्तर अलग करने चाहिए। और हमारे बच्चों का एक मसला ये भी है कि हम कज़न उनके जो होते हैं उनसे एहतियात नहीं होती घरों में या रिश्तेदारों में, बच्चों को हम भेज देते हैं। कुछ बच्चे ज़रा बड़ी उम्र के होते हैं और कुछ बच्चे कम उम्र के होते हैं। कम उम्र के बच्चों को कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और एक बिस्तर पे, एक जगह पे बच्चों को सुला दिया जाता है तो उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए हम, और एक मसला ये भी जहन में रहे कि इन मसाइल पर अमल करने से किसी के ऊपर बदगुमानी नहीं है और बदगुमानी करनी भी नहीं है। अगर 100 कज़न्स में या 100 वालिदैन में से अगर एक ख़राब है, कोई गलत ऐसी उससे हरकत हो जाती है, तो उससे जो है वो उस एक आदमी से बचने के लिए, एक कज़न से बचने के लिए बाकी सबसे एहतियात ज़रूरी है। जैसे कि आम तौर पे हज़रत इसकी एक मिसाल पेश करते रहते हैं कि मिठाई के डब्बे में अगर एक दाना ख़राब है तो हम उस पर रिस्क तो नहीं ले सकते कि इसको हम खा सकते हैं, उसको तो छोड़ना ही लाजमी है। तो इन मसाइल पर अमल करते हुए किसी के ऊपर शक, बदगुमानी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। बस हमने शरीयत के उसूल पर अमल करना है ताकि कोई मसला पैदा ना हो। तो अगर किसी बाप ने अपनी बेटी के साथ प्यार किया और प्यार में वालिद को शहवत महसूस हो गई, तो उस बेटी की जो माँ है यानी उसकी बीवी है, तो उस पर हमेशा के लिए वो हराम हो गई। अब इस पर एहतियात नहीं होती। और बाज़ लोग आकर बताते हैं कि हज़रत मैंने बेटी को अपनी गोद में बिठाया था और उससे प्यार किया तो मुझे शहवत महसूस होगी, अब क्या करूं। तो जब उनको मसला बताया जाता है तो फिर कहते हैं जी मुझे पता नहीं था। भाई अगर हमें पता नहीं है तो हमारे पता ना होने से शरीयत का मसला बदल तो नहीं सकता, कानून तो लागू हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि मसाइल हम कम से कम सुनने के लिए तैयार हो जाएं, और फिर जो हमारे खवास हैं वो तो अपने आप को तैयार कर लें कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह का सिलसिला शुरू हुआ है। तो हम खवास जब इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों में फ़िज़ा बन जाएगी, माहौल बन जाएगा कज़न से दूर रहने का, बेटियों से एक हद तक दूर रहने का और शरीयत की हुदूद की पाबंदी करने का। आम लोगों से अगर इस पर बात शुरू की जाए तो कहते हैं जी अच्छा बेटी के साथ भी ये मामला इस तरह, हालांकि मसाइल तो पैदा हो सकते हैं। एक मसला ये है। दूसरा मसला है ससुर का और बहू का मसला है। अब आम तौर पे लोग कहते हैं जी जो ससुर है वो बाप है और जो बहू है वो उसकी बेटी है। ये बात याद रहे कि बेटी भी बेटी है और ससुर भी बाप है, लेकिन बाप की तरह है, बहू बेटी की तरह है, बेटी नहीं है। इसलिए कि जो बेटी के हुकूक हैं या ससुर के हुकूक हैं वो तो शरीयत ने जो मुकर्रर किए हैं वो हैं, बल्कि सऊदी अरब के उलमा ने तो फतवा दिया है इस पर बाकायदा कि अगर दामा ससुर और बहू दोनों जवान हों तो उनको आपस में पर्दा करना चाहिए। लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि पर्दा करना चाहिए, लेकिन एक हद के अंदर रहना चाहिए। अब मसलन एक आदमी है, उसने आकर किसी मुफ्ती साहब को बताया जी मेरे वालिद साहब जो हैं वो शादी के फौरन बाद ही रोज़ाना कोई ना कोई चूड़ियाँ ले आते हैं मेरी घरवाली के लिए, अपनी बहू के लिए। उसको खुद कहते हैं मेरी बेटी है, मैं खुद पहनाऊंगा। वो कहते हैं मुझे शर्म आती है, अब मेरी घरवाली भी से शर्म आती है, लेकिन वालिद साहब मतलब एक वो इस तरह करते हैं। अब अगर वालिद को चूड़ियाँ पहनाते हुए बहू के साथ शहवत पैदा हो गई, दोनों में से एक की तरफ से शहवत पैदा हो गई, तो बीवी उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो गई। तो इसलिए इसमें एहतियात बहुत लाजमी है। बल्कि खुद कई दफ़ा लोग आकर बताते हैं, और एक दफ़ा तो मैंने खुद इसका मुशाहदा भी किया है कि उम्रे से कुछ फैमिलीज वापस आई, हमारे भी कुछ रिश्तेदार उसमें शामिल थे, वो वापस आए तो एक ससुर अपनी बहू के साथ इस तरह मिला जिस तरह मर्द आपस में मिलते हैं, इतने जोश के साथ मिला। हम उसको बदगुमानी नहीं करते हैं, लेकिन शरीयत के उसूल, वो उम्रे से वापस आ रहे हैं, वो बच्ची बेचारी इतनी सुकड़ रही है, इतनी सिमट रही है कि मैं किसी तरीके से मेरी जान छूटे, इतने एयरपोर्ट पर कितना रश होता है, लेकिन वो ससुर साहब नहीं छोड़ रहे थे। और उसको उस तरह प्यार करना जिस तरह के नहीं करना चाहिए। तो ये इतना हसास मसला है कि अगर उसको या बहू को, दोनों में से किसी एक को भी शहवत बगैर इरादे के भी शहवत हो जाती है, अगर पेश आ गई तो उसमें उसकी बीवी हमेशा के लिए उस पर हराम हो जाएगी। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात का, और ये इतना हसास इस लिहाज से भी है कि अगर कोई आदमी अपने वालिद से कहे, या वो लड़की ससुर से कहे कि जी आप मुझे इस तरह मतलब ना मिला करें, तो एक हंगामा खड़ा कर लेगा ससुर, कहेगा जी मुझे, मेरे ऊपर शक करते हैं, मैं इसका बाप नहीं हूँ, ये इस तरह, ये खुद गलत है तो तभी मुझे गलत समझती है। बेटे से बात करे, बाज़ बेटे इस तरह के होते हैं कि वो बाप से बात नहीं करना चाहते, या उसको कहेंगे कि तुम मेरे बाप पर शक करती है। औरतों की इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, और इनके लिए मसला हसास उनके लिए है ज़्यादा। अब उसको किस तरह डील करेंगे, इंशाल्लाह हज़रत आपको गए बगैर उसका तरीका बताते रहेंगे कि किस तरीके से अपने आप को ऐसे माहौल से, ऐसी जगहों से, ऐसे हालात से अपने आप को किस तरह बचा के रखना है। तो इसी तरीके से सास और दामाद का भी मसला है, वो अगर दोनों जवान हैं या जवान नहीं भी हैं, तो एक हदूद जो शरीयत ने मुकर्रर की है, उस हद से आगे अगर दोनों में से किसी एक को शहवत महसूस होगी, मिलते हुए गले लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं, और पता नहीं किस किस तरीके से मिलते हैं, उसका भी तरीका यह है कि उसके कंधे पे हाथ लगा दे या सर पे हाथ रख ले, कोई भी तरीका इख्तियार कर, लेकिन ऐसी हद के साथ हो कि पूरी पाबंदी के साथ, और लिबास भी इस तरह का हो कि एक तकद्दस उसमें होना चाहिए। बेटी अगर घर में है, बहू है, तो लिबास में बड़ी चादर ओढ़े ससुर के सामने, दूसरे लोगों के सामने। तो इसमें एहतियात अगर नहीं होगी तो बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। और मैं अभी तफसील में नहीं जा रहा, बस इख्तसार के साथ, तफसील में अभी वक्त नहीं है। दूसरा मसला यह है कि देवर का मसला है घर में। जेठ से तो भाभी घबराती है, वो तो बड़ा भी होता है, उसका रोब भी होता है, तो जो होता है देवर, इसको ये घर में उसकी बचपन लड़कपन जवानी उसके भाभी के सामने होती है सारी चीज़ें, और इंसान इसमें परवाह भी नहीं करता है। मर्द भी समझा है मेरा भाई है, और जो ससुर हैं वो कहते हैं जी ये तो इसके भाइयों की तरह है, और उसको दोनों को अकेला घर में छोड़ के लोग चले जाते हैं, गाड़ी में उसके साथ उसको अकेला भेज देते हैं, एक सीट पर बाज़ औक़ात सफ़र करना होता है तो एक सीट पर दोनों बैठ जाते हैं, बहुत सारी सूरतें हैं उसमें। तो ये जो देवर है, इसको भी ये पता होता है कि भाभी की कौन सी चीज़ें उसको पसंद हैं और कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ तक जो है वो मसाइल होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल्ला ये देवर क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहम्द अलमौत, ये तो मौत है, मौत, इससे बचना चाहिए। तो इससे बड़े कौन से अल्फाज होते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बयान करते। अब हमें जो है इस देवर से और भाभी का जो मसला है, इसमें भी हमें बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए। और इसी तरीके से जो जिस औरत से जिना हो चुका है, जो मजनिया है, उससे उस मर्द का निकाह हो जाएगा, लेकिन अगर वो उसकी बेटी से निकाह करना चाहेगा तो उससे निकाह नहीं होगा, क्योंकि माँ बेटी दोनों एक शख्स के घर में नहीं आ सकती। इधर शहवत का मसला पैदा हुआ तो बीवी हराम, लेकिन वहाँ निकाह तो हो सकता है। और यहाँ पर जो ससुर और दामाद का मसला है, सास और बहू का मसला है, अपनी बेटी का मसला है, हराम तो हराम, हलाल भी फिर जायज़ नहीं है बाद में, उससे वो हलाल तरीके से भी मियाँ बीवी आपस में नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह के मसाइल हैं जो बहुत ही हसास मसाइल हैं, इनमें हम सबको एहतियात करनी चाहिए। और ख़वास जो ख़ासकर लोग हैं या हजरत के पास जिनका आना जाना है, ख़वातीन हैं और जो मर्द हजरात हैं, सबको अपने ऊपर इन अपने घरों में इन चीज़ों को बच्चों से ही काम शुरू करना चाहिए, ताकि कोई ऐसा मसला पेश ना आए। अल्लाह बचाए कि हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह खैर गालिब है फ़िलहाल, ये एहतियाती तदाबीर हैं। तो शर गालिब होने से पहले पहले एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए, बाकी जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो अगर एहतियात नहीं होगी तो शर गालिब हो जाएगा, उसमें तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खैर गालिब करनी है तो कुछ करना पड़ेगा, अगर शर के इंतज़ार करेंगे कि अभी फ़िलहाल कोई मसला नहीं है, तो मसले पैदा होने में तो कोई देर नहीं लगती है। इसलिए शरीयत ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं, तिलका हुदूदुल्लाह, वो अल्लाह ताला की हदें हैं, उनको क्रॉस करेंगे, उनसे आगे जाएंगे, किसी वक्त भी कोई मसला हो सकता है। तो इसी तरीक़े से बस हमारे दोस्त ऐसे होते हैं कि उन्होंने वालिदैन के बारे में इतना फजीलतें सुनी होती हैं कि वालिदैन की इस तरह खिदमत करनी चाहिए, नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसे कुछ मसाइल सुन भी लेते हैं तो खामोशी इख्तियार करते हैं, कहते हैं जी वालिद से कैसे बात करूँ, माँ से को किस तरह मना करूँ, अब तो ये इनकी तो नाफरमानी हो जाएगी। तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला जब मुसलमान हुए तो उनकी वालिदा ने अपना जो है वो सर भी खोल दिया और साए में आना भी छोड़ दिया और इसी तरीके से खाना पीना भी छोड़ दिया। और हज़रत साद बिन अबी वक्कास अपनी वालदा के अकलौते बेटे थे और वो भी अपनी माँ से मोहब्बत करते थे, तो वो कभी वालदा के पास जाते हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरी वालदा साए में भी नहीं जा रही और खाना पीना भी छोड़ दिया है। और वो कहती है कि जब तक मेरा बेटा वापस अपने दीन पर नहीं आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक मैं खाना पीना नहीं करूँगी। तो उस वक्त कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई, वस्सैनल इंसान बेवालिदैही एहसाना, हम इंसान को उसके वालिदैन के बारे में जो है वो हुक्म देते हैं कि वो अपने वालिदैन का एहतराम करे, लेकिन अगर वो वालिदैन उसको शिर्क पर मजबूर करते हैं तो वह इन जाहदा का लितुशर का भी उसको शिर्क के बारे में कहते हैं फ़ला तुतेमा, फिर उनकी ताबेदारी ना करें। अगर किसी के साथ कोई ऐसा मसला हो तो उनको मसले की हसासियत समझाई जाए, बताई जाए कि तरीके के साथ, ये नहीं कि बेअदबी करनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को समझा रहे हैं तो किस तरह, या अबाते है बाज़ोकात बताया भी नहीं जाता कि आप में ये खामी है, लेकिन मसला किसी तरीके से उन तक पहुंचाया जाता है तो ख़ुद ही अगर समझदार हो तो समझ जाते हैं। लेकिन हर आदमी ये समझता है कि मेरे घर का माहौल दीनी कितना है, मैं किस तरीके से अपने वालदैन को या ऐसी महाफिल में ले जाएं या ऐसे बयानात सुना दें ताकि अगर घर वालों को, ख्वातीन में अगर कोई सुस्ती है या मर्दों में है, तो बयानात उनको सुनाए जाएं ताकि इन मसाइल से वो आगाह हो जाएं और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करें। मैं फिर दोबारा ये गुजारिश करूँगा कि मसाइल जो हसास कुछ यहाँ पर बताए गए हैं, इन पर ख़ुद किसी ने ना अपने ऊपर फतवा लगाना है ना किसी को मसला बताना है कि ये इस तरह हो जाता है, बल्कि उससे जिक्र भी ना करें। वो अगर कोई इस तरह मसला बता देता है या अपना ज़ाती मसला है तो फिलफौर फिर जो है वो रब्ता किया जाए ताकि उस मसले को पूरा सुनकर उस पर गौर करके बहुत सारी शरायत के साथ और तफसील के साथ उसके बाद फिर उस पर कोई बात की जाती है। बस घरों में तो ऐसे मसले पैदा हो चुके होते हैं कि एक आदमी ने मजनिया की बेटी से निकाह कर लिया होता है, अब पहले पता नहीं होता, जब सुन लेते हैं तो दो दो बच्चे भी हो चुके होते हैं, बाद में वो आ जाते हैं जी मेरे लिए तो हराम था वो, मैंने उसकी वालदा के साथ भी जना किया और उसका भी बेटी के साथ शादी कर ली बाद में, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। अब बाज़ वो ख़ुद नहीं कर सकते कि भाई इस तरह फ़ौरन कर लिया जाए, पूरे मसाइल सुने जाएंगे। और घरों में इसकी भी एहतियात करनी चाहिए कि बाज़ लोग बेटियों से कहते हैं जी मेरे पाँव दबाओ, मना नहीं है, एहतियात लाजमी है, भी घर वाली से करा सकते हैं, किसी बेटे से भी आप पाँव दबवा सकते हैं, मेरे सर की मालिश करो, बस तो जो है वो मेरे हाथों की मालिश करो, पाँव की मालिश करो, टांगों की मालिश करो, तो मना नहीं, लेकिन इसमें एहतियात ये है कि ऐसा काम ना किया जाए कि जिससे अचानक कोई ऐसा मसला पैदा हो और जिसकी वजह से फिर हमेशा के लिए बीवी हराम हो जाए या बेटे का मसला बन जाए। तो इन सब लोगों को एहतियात करनी चाहिए। और इसी तरीक़े से जो सौतेली बेटी होती है वो बेटियों की तरह होती है, किसी ने अगर किसी और ऐसी औरत के साथ निकाह किया जो पीछे से बेटी साथ लेके आई, तो उस बेटी के साथ भी ऐसी ही एहतियात बरतनी जैसे सगी बेटी के साथ होता है। अगर किसी ने इस तरह कर लिया तो उसके साथ भी मामलात बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और जितने हमने इस पर गुफ्तगू की है हम सबको अल्लाह ताला इन मसाइल पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अपने घरों में हमें ऐसी फ़िज़ा बनाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हमारे घरों में जो मसाइल आए दिन बन रहे हैं उनसे हमारी जान छूट जाए। वा आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबीयिन, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे, असल में कुछ ख़वातीन के दरख्वास्त पर ये बात हुई है कि उन्होंने ये मतलब गुजारिश की थी कि इस मौजू पर, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मुफ्ती साहब ने जो बयान फरमाया है ये असल में ख़वातीन ही की मतलब जिसको कहते हैं यानी रिक्वेस्ट पर दरख्वास्त की थी कि किस किस मौजू पे बात हो जाए। और वाकईतन मैं उनसे बड़ा खुश हूँ इस मसले में कि इन्होंने इस मसले का इदराक कर लिया, और वाकईतन इसका इदराक बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाज़ दफ़ा मसाइल इतने गंभीर हो जाते हैं कि उसका हल बताया जाता है तो लोग दीन से निकलते हैं, और नहीं बताया जाता है तो उम्र भर गुनाहगार रहते हैं। तो इस वजह से पहले ही मतलब इन चीज़ों के बारे में इंसान जान ले तो ये ज़रूरी है। अभी तो ये ऐसी मजबूरियाँ हैं कि मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि भाई निकाह के साथ ही तलाक़ के मसाइल भी साथ बताने चाहिए, क्योंकि तलाक़ जो शरी तरीका है अव्वल तो देने नहीं चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता देना बहुत मजबूरी हो तो शरी तरीके से दीजिए ताकि वापसी का कोई रास्ता तो हो। लोग जज्बात में आकर वापसी का रास्ता अपने ऊपर बंद कर लेते हैं, फिर जो है ना दीन के बारे में बातें करते रहते हैं। तो ये शैतान के सारी कारस्तानी होती है, और शैतान ही चक्कर देता है कि जब आपस में मामला इस तरफ बढ़ रहे होते हैं तो शैतान कह रहे थे बस जल्दी करो तलाक दो, जल्दी करो तलाक दो, और बीवी भी कहती है मुझे तलाक दो, बगैर तलाक के तो एक बात भी नहीं सुनना चाहती। और मैं कहते कहते थक जाता हूँ कि खुदा के बंदो ये बाद में तुम ही पछताओगे, बाद में तुम ही परेशान होगे, बाद में तुम ही पशेमानी होगी, लेकिन उस वक्त नहीं सुनते। और जैसे ही काम हो जाता है उसके अगले दिन मसला पशेमानी परेशानी ये सारी बातें। तो शैतानी निज़ाम नहीं है तो और क्या है, ये सारे शैतानी निज़ाम है। तो इन चीज़ों के बारे में लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, और ये जो मसाइल है जो मुफ्ती साहब ने बताया ये बहुत ही अहम और ज़रूरी मसाइल है। यही तो फ़र्ज़-ए-ऐन इल्म है, यही तो फ़र्ज़-ए-ऐन इल्म है। अगर ये इल्म ना हो किसी के साथ तो फिर उसके बाद फिर जो क्या होगा जो होगा वो तो फिर ज़ाहिर मतलब कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैं आपको मुफ्ती साहब की तायीद में एक बात अर्ज़ करता हूँ, अभी मैंने इब्तदाई बयान में भी ये बात की है लेकिन बहुत सारी ख़वातीन उस वक्त तक आई नहीं होंगी, तो उस वक्त इस वजह से मजबूरन मैं वो बात कर रहता हूँ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखिए कितने पाक लोग हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफ़ा दरवाजे के बाहर मतलब जो है ना टहल रहे हैं घर के बाहर, तो किसी साहबी ने पूछा क्यों आप घर में क्यों नहीं जा रहे हैं, फरमाया बेटी हफ्सा आई हुई है अकेली थी। अब अंदाज़ा कर ले कि उस दौर में तो ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कि लोग, लेकिन लेकिन अब दुरंदेशी उमर रतलाम की फरासत तो मशहूर है, दुरंदेशी मशहूर है, तो पता चलता है कि उमर रतलाम ने हमारे लिए मतलब ये रास्ता बनाया हुआ है कि हम लोग मुहतात रहें। और वाकईतन इसमें मुहतात होना चाहिए, हर तरफ एहतियात रखना चाहिए, बाद में मसाइल बड़े ही गंभीर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए।